श्रोताओं, कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम सत्यवचन में हम अध्ययन कर रहे हैं लैव व्यवस्था नामक पुस्तक की, जिसमें धार्मिक पर्वों, अनुष्ठानों, शुद्धता की विधियां, नैतिक आचरणों, सातवें वर्ष और जुबली वर्ष से संबंधित नियमों का वर्णन है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि इन दिनों में हम लय व्यवस्था नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले अध्ययन में इस पुस्तक की प्रस्तावना एवं रूपरेखा को देखा था। आज हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए अध्याय 1 के पद 3 से आरंभ करेंगे, जिसमें हम होम बलि या अग्नि बलि के विषय में विचार करेंगे। तो आइए हम अपने बाइबल को खोलें और लय व्यवस्था की पुस्तक उसके 1 अध्याय और 3 पद को पढ़ें, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे, वह उसे अपनी व्यक्तिगत इच्छा से भेंट बलि चढ़ाएगा। मित्रों, क्या मैं कह सकता हूँ कि यह स्वतंत्र इच्छा बहाने की भावना के साथ है? प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। यह निमंत्रण समस्त मानव परिवार के लिए कहा गया है, कोई भी अलग नहीं किया गया सिवाय उनके जो स्वयं से अपने को अलग करते हैं। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक शर्त देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति प्यासा हो। आप कह सकते हैं कि मैं प्यासा नहीं हूँ, तब तो यह आमंत्रण आपके लिए नहीं है, परंतु यदि आप प्यासे हैं तो वह आपको बुलाता है, क्योंकि वह आपकी संतुष्टि कर सकता है। यशायाह नबी ने इसे उसके निमंत्रण में शामिल किया है, अहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। इसे हम यशायाह 55 उसके 1 पद में पाते हैं। हर एक जन जो चाहता है वह यीशु के पास आ सकता है। उसके अंदर आवश्यकता होना चाहिए और इच्छा शक्ति भी। यदि आप में यह दोनों है तो निश्चय ही आप अभी आएं। मित्रों, दो प्रकार के पशुओं को अग्नि बलि या होम बलि के लिए प्रयोग किया गया है। भीड़ या समूह में रहने वालों को पशु और झुंड में रहने वालों को भेड़ कहा गया है। जंगली जानवर जो शिकार करते उन्हें इससे अलग किया गया है। मांसाहारी जानवरों को सभी बलिदानों में चढ़ाने की मनाही है। दूसरे जानवरों को मारने और खाने वाले जानवर कभी भी मसीह को प्रकट नहीं करते, जिसने स्वयं दूसरों के लिए अपनी जान दी। एक और प्रतिबंध कि पशु शुद्ध हो एवं पालतू हो, किसी शिकारी में नहीं पकड़ा गया हो, केवल वह जो कीमती और अति प्रिय हो बलिदान में चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि मसीह के गुण भी यही हैं। परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को भी नहीं छोड़ा। मसीह ने क्रूस पर दुख सहा, परंतु पिता ने स्वर्ग पर दुख सहा। अंतिम प्रतिबंध की पशु पालतू अर्थात मालिक का आज्ञाकारी हो। ओहो, मसीह की कितनी सुंदर तस्वीर है। मसीह एक आज्ञाकारी सेवक थे, वह सेवा करने आए और मृत्यु तक आज्ञाकारी रहे। मित्रों, अग्नि बलि या होम बलि का वर्णन केवल लय व्यवस्था की पुस्तक में ही मिलता है, और यह बलि केवल उन लोगों के द्वारा चढ़ाई जाती थी जो ईश्वर का अर्थात परमेश्वर तक अपनी पहुंच बनाना चाहते थे। होम बलि के लिए इब्रानी भाषा में शब्द ओलह का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ है जो ऊपर उठता है। यह कहना व्यर्थ नहीं होगा कि होम बलि धुएं में ऊपर जाता है। वेदी पर पूर्ण रूप से भस्म होता था और राख के अलावा कुछ भी नहीं बचता था। इसका मतलब कि अग्नि बलि या होम बलि वही प्रकट करता जो परमेश्वर मसीह यीशु में देखता है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 2 पद में संत पौलुस कहते हैं कि मसीह ने अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। मित्रों, यहाँ लय व्यवस्था 1 अध्याय के 9, 13 और 17 में संपूर्ण बलि वेदी पर अग्नि में अर्पित सुखद सुगंध के समान है। यही बात परमेश्वर मसीह में देखते हैं। बात यह नहीं है कि आप उसमें क्या देखते या मैं उसमें क्या देखता हूँ, वरन परमेश्वर उसमें क्या देखते हैं। और यही बात सबसे महत्वपूर्ण भी है। परमेश्वर कह रहे हैं कि यीशु ने आपके पापों के लिए व मेरे पापों के लिए जो कुछ किया उसमें वह पूर्णतः संतुष्ट हैं। परमेश्वर उस कीमत से संतुष्ट हैं जो यीशु ने मेरे और आपके पापों के लिए चुकता की है। यीशु आपको अनंत अर्थात पूर्ण रूप से बचा सकता है, हाँ, यदि आप उस पर भरोसा रखेंगे तब। अब प्रश्न यह है कि क्या आप उससे संतुष्ट हैं? मित्रों, ध्यान दें कि अग्नि बलि या होम बलि का पशु नर हो, इसका मतलब शक्ति अर्थात ताकत से है। यह उस तथ्य को प्रकट करता है कि यीशु बचाने में सामर्थ्य और पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। इब्रानियों 7 अध्याय के 25 पद में हम इसे पाते हैं। फिर बलि निष्कलंक हो, इसका मतलब कि पशु निर्दोष या पूर्णता सिद्ध हो। यह मसीह की परिपूर्ण सिद्धता का संकेत है, उसके स्वभाव में पाप नहीं है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 5 में हम पाते हैं, और न तो उसने पाप किया। इसी हम पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 22 में पाते हैं, जो पाप से अज्ञात था। दूसरा क्रंथी 5 अध्याय के 21 में हम पाते हैं, और जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग था। इब्रानियों 7 उसके 26 पद में हम पाते हैं, वह परमेश्वर का प्रिय पुत्र है जिसके लिए पिता ने कहा मैं उससे प्रसन्न हूँ। मत्ती 3 उसके 17 पद में, वह स्वयं के लिए बलिदान चढ़ाएगा। स्वेच्छा शक्ति, इसका अनुवाद 1901 में अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन बाइबल के अनुसार यहोवा द्वारा ग्रहण किया जा चुका है, क्योंकि एक छोटे पशु की प्रायश्चित मृत्यु द्वारा परमेश्वर ने पापी को स्वीकारा था। पशु बलि जीवित नहीं परंतु मृतक होनी चाहिए, यह आदेश अनिवार्य है। प्रभु यीशु का निष्कलंक जीवन अथवा इस बात को स्वीकारने से हमारा बचाव नहीं हो सकता है, केवल उसकी मृत्यु के द्वारा ही पापी मनुष्य बचाए जाते हैं। मित्रों, सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि उसकी मृत्यु के समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 भागों में फट गया। उसकी मृत्यु के द्वारा ही परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग खुल गया। उसकी मृत्यु से ही पापी का उद्धार है। ध्यान दें कि पर्दा उसके शरीर का घोतक है। इब्रानियों 10 उसके 20 पद में हम पाते हैं, उसका सिद्ध जीवन हमें परमेश्वर से दूर करता है। परमेश्वर जो मांग करता है वह है सिद्ध जीवन जैसे मसीह का, और आप व मैं उसे दोहरा नहीं सकते। उसका जीवन एक मापदंड है, इसलिए पिता यीशु के विषय यह कह सका कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। मत्ती 3 के 17 पद में हम पाते हैं, आप और मैं उस मापदंड तक नहीं पहुंच सकते, अतः मसीह का जीवन हमें नहीं बचा सकता, यह हमें परमेश्वर से दूर रखता है। उसी प्रकार जैसा मंदिर का पर्दा मिलाप वाले तंबू में लोगों को ईश्वर से दूर रखता था, हमारे पास परमेश्वर तक पहुंचने का कोई दूसरा आधार होना चाहिए, और वह मार्ग यीशु की मृत्यु के द्वारा है, वही जो पर्दे को फाड़ा। जिस क्षण आप और मैं क्रिस्ट की मृत्यु के द्वारा प्रवेश करते हैं तो परमेश्वर का रास्ता या मार्ग खुल जाता है। यह मसीह की मृत्यु है जिससे पापी बचाए जाते हैं। मित्रों, भेंट या बलिदान को स्वेच्छा से लाना था, आप मसीह के पास आने को बाध्य नहीं है, परंतु यदि आप उद्धार पाना चाहते हैं या बचना चाहते हैं तो आपको मसीह के पास आना ही होगा। इसके अतिरिक्त परमेश्वर के पास कोई दूसरा मार्ग नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय के 6 पद में, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आप सोच सकते हैं कि यह विचार संकीर्ण व मतांधता है। मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ, हाँ ऐसा तो है, पर सबसे मजेदार बात यह है कि यह आपको परमेश्वर के निकट लाएगा। अब आपको आने की आवश्यकता नहीं, यहाँ आपकी स्वतंत्र इच्छा काम करती है, आपको आने की जरूरत नहीं। परंतु यदि आप परमेश्वर के पास आना चाहते हैं तो यही एक मार्ग है। आप अपनी धार्मिकता के आधार पर उसके पास नहीं आ सकते, वह आपके धर्म के कार्यों को ग्रहण नहीं कर सकता, वह उनमें से किसी को भी नहीं स्वीकारता। उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, परंतु अपनी दया के अनुसार। तीतुस 3 अध्याय उसके 5 पद में हम पाते हैं, मित्रों मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यह दूसरा आज्ञा सूचक शब्द है। वे कहीं दूसरी जगह पर बलि नहीं चढ़ा सकते थे, यह इसराइलियों को मूर्ति पूजा से बचाने के लिए था। वे बार बार मूर्ति पूजा के फंदे में पड़ते थे, और अंत में इसी कारण उन्हें बाबुल की बंधुआई में जाना पड़ा था। और इसका हमारे लिए भी संदेश है, इससे हमारी यह धारणा कि हम अपने तरीके से ईश्वर के समीप पहुंच सकते हैं, इस तथ्य का खंडन होता है। हम अपनी शर्तों पर परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते। मेरे मित्र, परमेश्वर हमारे लिए शर्त बनाते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 64 अध्याय के 6 पद में लिखा है, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चिथड़ों के समान है। ईश्वर को हमारी धार्मिकता स्वीकार नहीं। कुछ लोगों का विचार है कि ईश्वर की धार्मिकता का स्तर मानव की अपेक्षा कुछ ही अधिक है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं। वह संपूर्ण पवित्र है। कुछ भी धार्मिकता जिसे ईश्वर स्वीकार कर सकते हैं, वह धार्मिकता मसीह पर विश्वास के द्वारा ही है। उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, उसे खरीद नहीं सकते। परमेश्वर हमारी घटिया धार्मिकता को नहीं स्वीकारता है, वह तो गंदे नाले में बह जाती है। भेंट या बलि मिलाप शिविर के द्वार पर दी जानी चाहिए। मित्रों, परमेश्वर के निकट आने का और कोई मार्ग नहीं है, परंतु उसका ही मार्ग है। प्रभु यीशु ने कहा, कोई बिना मेरे द्वारा पिता के पास नहीं पहुंचता। अब हम लेवियस्थाय की पुस्तक उसके एक अध्याय के चार पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, और वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वह उनके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। मित्रों, वह होम बलि के पशु के सिर पर हाथ रखेगा। डॉक्टर केलो का कथन है कि यह नियुक्ति का स्पष्ट उल्लेख है। लय व्यवस्था 24 अध्याय के 14 पद में भी इसका उल्लेख है, जहां पर गवाह उसके सिर पर हाथ रखता है इसके पहले कि उसे पत्थरों से मारा जाए। मूसा ने यहोशू के सिर पर हाथ रखकर उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। डॉक्टर केलो की पुस्तक में एक उदाहरण इसी विषय पर दिया गया है। परमेश्वर की दयापूर्ण प्रबंध के अनुसार यह संकेत है तबादले का। पाप के लिए दंडित होना, जो एक अर्पणकर्ता से एक निर्दोष बलि पशु के अर्पण द्वारा है। यहाँ से बलि चढ़ाने वाला एक अर्पणकर्ता का स्थान लेकर खड़ा होता है और अर्पित पशु का सफर दंड के न्यायानुसार होता है। दूसरे शब्दों में, वध किए जाने वाले बेचारे पशु के सिर पर हाथ रखकर अर्पणकर्ता अपने स्थान पर उसे नियुक्त करता था। मानव इस बात को स्वीकारता है कि वह मरने के उपयुक्त है। मित्रों, जब आप मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, तो आप यह भी मानते हैं कि आप एक पापी हैं और आप स्वयं को अपने आप से नहीं बचा सकते। आप अपने पाप से मुंह मोड़ते और मुक्तिदाता की ओर फिरकर उसका अनुकरण करते हैं, अर्थात आप उसका अनुकरण करना चाहते हैं। यह छोटा बलि पशु आपके बदले मृत्यु सह रहा है। यही वह कार्य है जो ख्रिस्त अर्थात मसीह ने हमारे लिए किया। जब आप मसीह को ग्रहण करते हैं, तो आप अपने हाथ को उसके हाथ में सौंप देते हैं। इसका मतलब सीधे यह होता है कि आपने उसे स्वयं का प्रभु और उद्धारकर्ता या मुक्तिदाता नियुक्त कर दिया है। मित्रों, आजकल लोगों के मन में ऐसा विचार है कि सिर पर हाथ रखने से कुछ फायदा होता है। उनके विचार से शक्ति का तबादला होता है। हाथ रखने से केवल एक ही चीज होता है, अर्थात वह है रोग के जीवाणु का ही हस्तांतरण हो सकता है, परंतु इससे संभवतः किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति हो जो आपका स्थान ग्रहण करे। जब हम लोग चर्च में अर्थात कलिसिया में अगुओं के रूप में किसी प्रचारक पर हाथ रखते हैं, जैसा अंताकिया की कलिसिया में पौलुस और बरनाबस के साथ किया गया था, तब हम में से किसी एक को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके भेजते हैं। यीशु मसीह ने हमारा स्थान लिया जब वह इस प्रकार के निम्न शब्दों का उच्चारण करते हैं, उनको परमेश्वर ने हमारे लिए पाप बना दिया। दूसरा क्रंथियों की पत्री 5:21 पद में हम पाते हैं, और यीशु हमारे पापों के कारण पकड़वाए गए, रोमियो 4:25 पद में। इब्रानी भाषा में हाथ धरने का मतलब दूसरे पर भारी मात्रा में आश्रित होना है। तेरी जलजलाहट मुझ पर बनी हुई है। धर्मानुष्ठान अर्थात समारोह का यह भाग प्रायश्चित की चर्चा है, तब बलि पशु की मृत्यु को स्वीकृति प्रदान करता है। उसके प्रायश्चित के लिए उसका बलिदान स्वीकार होगा। मित्रों, हमने पहले ही बताया है कि प्रायश्चित का अर्थ ढकना है, हटाना नहीं, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे, इब्रानियों के पत्र 10:4 पद में। केवल परमेश्वर का मेमना ही पापों को दूर कर सकता है। भेंट बलि सार्वजनिक रूप से की जानी चाहिए। वह मिलाप तंबू के नीचे तक गया, वह वेदी के निकट पहुंचा, तब वहां छोटे पशु का वध किया। यह सब सार्वजनिक था। किसी भी पापी को मसीह का अंगीकार जनता के बीच में या लोगों के सामने करना है। विश्वास के द्वारा ही हम अपना हाथ मसीह के हाथों में देते हैं, पर लोगों को इसका पता होना चाहिए कि हमने ऐसा किया है। मेरे विचार से वर्तमान में बपतिस्मा का यही सार्थक अर्थ है। बपतिस्मा का अर्थ किसी के साथ जुड़ना, और सार्वजनिक रूप से या मसीह के साथ उसके मृत्यु एवं पुनरुत्थान में जुड़ने का ही अंगीकार है। यही कारण था कि प्राचीन कलीसिया में पानी के बपतिस्मे की बड़ी आवश्यकता थी। अब हम आगे देखते हैं होम बलि का विधि विधान। लय व्यवस्था की पुस्तक 1 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे, और हारून के पुत्र जो याजक हैं, वे लोहू को समीप ले जाकर उस वेदी की चारों आलंगों पर छिड़के, जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। मित्रों, अब हम अग्नि बलि या होम बलि के धार्मिक कृतित्व को देखते हैं। विधिवत उचित भेंट बलि को चुनना है, अर्थात एक सही स्वस्थ बलि पशु। एक पापी या दोषी उस बलि पशु को मिलाप शिविर के प्रवेश द्वार पर एक याजक से भेंट करता है। दोषी व्यक्ति स्वयं उसे वध करता है। पद 14:15 एक अपवाद है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, रोमियो 6:23 पद में। यहाँ पर निर्दोष दोषी के लिए मरता है। इसलिए मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, पहला पत्रस 3 उसके 18 पद में, हमारे पापों के कारण ही यीशु मसीह को मृत्यु दंड उठाना पड़ा। इसे अधिक व्यक्तिगत बनाते हुए, मेरे अपराध ही मसीह की मृत्यु के उत्तरदायी हैं। आपके पापों के कारण ही मसीह को क्रूस की मृत्यु सहनी पड़ी। उसमें धार्मिक अगुए, इसराइली राष्ट्र, रोमी साम्राज्य भी शामिल हैं। प्रिय मित्रों, लोग जैसा चाहें वैसा तर्क वितर्क कर सकते हैं, परंतु मूल तथ्य तो यही है कि यदि मैं और आप पापी नहीं होते तो उसे कोई भी मृत्यु दंड नहीं दे सकता था। हमारे पापों के कारण ही उसे मृत्यु की सजा मिली। प्रत्येक भेंट बलि को वध किया जाना था, चाहे पापी अथवा पुरोहित जो राष्ट्र के लिए कार्य करता है बलि पशु का वध करता है। बलि पशु के बहाय लहू के अलावा पापों की क्षमा नहीं थी, इसलिए वर्तमान में केवल मसीह के रक्त के द्वारा ही हमारे सारे अपराध क्षमा किए जाते हैं। बलि पशु के रक्त को लेकर पुरोहित वेदी पर उसे छिड़कता था। रक्त जीवन का प्रतिनिधित्व करता है एवं छिड़का जाना ईश्वर की प्रस्तुति थी। अब हम लेविवस्था की पुस्तक 1 अध्याय उसके 6-9 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, फिर वह होम बलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखें और आग पर लकड़ी सजा कर धरें, और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजा कर धरें, और वह उसकी अंतड़ियों और पैरों को जल से धोए। तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। मित्रों, प्रत्येक काम सुंदर ढंग से क्रम व तरीके से होना था। परमेश्वर गड़बड़ का ईश्वर नहीं है। भेंट बलि को टुकड़ों में विभाजित करना था ताकि वह स्पष्ट दिखाई पड़े और अग्नि में आसानी से भस्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह का आंतरिक जीवन संसार के समक्ष पिछले 2000 वर्षों से खुला पड़ा है और उसकी समीक्षा प्रत्येक दूसरे व्यक्ति ने की है। किसी अन्य व्यक्ति के अलावा उसके बारे में अनेक मतभेद हैं। उस युग में और आज के युग में भी यह चर्चा जारी है। वह आज भी प्रश्न पूछता है कि लोग मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या कहते हैं। आजकल उसके बारे में अनेक विचार प्रचलित हैं। उनमें कई भ्रांतियां अथवा इष्ट निंदा भी हैं। परंतु यह निर्विवाद और सच है कि वह पवित्र, अहानिकारक, निर्दोष, पापियों से भिन्न है। प्रभु यीशु मसीह उनके वर्षों से जिस प्रकार लाछन लगाए गए, वह आज भी सर्वश्रेष्ठ, सर्व सौंदर्य, प्रेम से भरपूर है। तब हम आगे पढ़ते हैं लेविवस्था की पुस्तक 1 अध्याय के 10-13 पद में लिखा है, और यदि वह भेड़ों व बकरों का होम बलि चढ़ाए तो निर्दोष नर को चढ़ाए, और वह उसको यहोवा के आगे वेदी की उत्तर वाली अलंग पर बलि करे, और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे उसके लोह को वेदी के चारों अलंगों पर छिड़के, और वह उसको टुकड़े टुकड़े करे और सिर और चर्बी को अलग करे, और याजक इन सब को उस लकड़ी पर सजा कर धरे जो वेदी की आग पर होगी, और वह उसकी अंतड़ियों और पैरों को जल से धोए, और याजक सबको समीप ले जाकर वेदी पर जलाए कि वह होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। मित्रों ध्यान दें, भेंट बलि को टुकड़ों में बांटना तथा भली भांति दीख पड़ना चाहिए। वेदी पर अग्नि प्रज्वलित थी। अग्नि यह आवश्यक नहीं कि नर्क, गुस्सा, बदले की भावना का बोध कराए। मैं उनसे सहमत नहीं जो ऐसा सोचते हैं। अग्नि से मतलब मूसा की जलती झाड़ी से भी नहीं है। अक्सर अग्नि परमेश्वर की अभूतपूर्व शक्ति एवं शुद्धता करने वाली ज्वाला का प्रतीक है। मलाकी 3 अध्याय उसके 3 पद में हम पाते हैं, वह रुपए का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा, और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रुपए के समान निर्बल करेगा, तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। मित्रों, अग्नि परमेश्वर की वह प्रतिरोध शक्ति है जो कभी सर्वनाश करती, कभी शुद्ध करती तथा कभी भस्म भी करती है। पदार्थ के स्वभाव पर निर्भर करता है कि उस पर अग्नि का प्रभाव कैसा होगा। यह अग्नि बलि में या होम बलि में परमेश्वर के प्रति मसीह के संपूर्ण समर्पण की बात कही गई है। यह पूर्ण समर्पण है। हमारे अनुभव के अनुसार यह अनिवार्य भी है यदि हमें परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करना है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर भस्मकारी आग है, वह ईर्ष्यालु परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसके 24 पद में हम पाते हैं, प्रिय मित्रों, आप परमेश्वर को ठंडों में नहीं उड़ा सकते, उससे अधिक समय तक खिलवाड़ नहीं कर सकते, और यही कारण है कि आजकल की मसीही सेवा कितनी दिखावटी है। मैं नम्रता से परंतु जोर देकर कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की सेवा नहीं करें जब तक कि उसे अपने अंदर की सफाई नहीं करने देते और जीवन को शुद्ध नहीं बना लेते। आजकल हम पवित्रता की बात भुला बैठे हैं। कितना अधिक इसकी ओर हमारे जीवन में आवश्यकता है और कलीसिया के जीवन में भी। हम आगे पढ़ते हैं लय व्यवस्था की पुस्तक उसके एक अध्याय के 14-16 पद में। और यदि वह यहोवा के लिए पक्षियों का होम बलि चढ़ाए तो पंडुकों व कबूतरों का चढ़ावा चढ़ाए, याजक उसको वेदी के समीप ले जाकर उसका गला मरोड़ के सिर को धड़ से अलग करे और वेदी पर जलाए और उसका सारा लहू उस वेदी की अलंग पर गिराया जाए और वह उसका ओझर मल सहित निकालकर वेदी की पूरब की ओर से राख डालने के स्थान पर फेंक दे। मित्रों, परमेश्वर के लिए भेंट न लाने में निर्धनता अपवाद नहीं है। पशु के स्थान पर चिड़िया लाई जा सकती है, कोई भी चिड़िया पकड़ सकता है एवं भेंट चढ़ा सकता है। क्या आपने ध्यान दिया, जब प्रभु यीशु पैदा हुए तो उनके माता पिता ने कबूतर भेंट बलि चढ़ाई। उसके माता पिता निर्धन थे और वह गरीबी में जन्मे थे। अग्नि बलि या होम बलि का कारण, लय व्यवस्था की पुस्तक एक अध्याय उसके 17 पद में हम पढ़ते हैं, और वह उसको पंखों के बीच में से फाड़े पर अलग अलग न करे, तब याजक उसको वेदी पर उस लकड़ी के ऊपर रख कर जो आग पर होगी जलाए कि वह होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। मित्रों, यहाँ तीसरी बार कहा गया कि अग्नि बलि या होम बलि प्रभु को अग्नि में अर्पित सुखद सुगंध है। इससे स्पष्ट है कि भेंट या बलि का यही मुख्य कारण है। यही बात परमेश्वर भी यीशु मसीह के बलिदान में देखते हैं। अब हम आगे आते हैं, होम बलि का नियम या अग्नि बलि का नियम। होम बलि का विधि विधान लय व्यवस्था 6 अध्याय उसके 8-13 पद में मिलता है। प्रातः और संध्याकालीन भेंट बलि होम बलिदान होते थे, जिन्हें हारून और अन्य पुरोहित राष्ट्र के नाम पर ईश्वर को चढ़ाते थे। निर्गमन की पुस्तक 29 अध्याय उसके 38-46 पद में हम इसे पाते हैं। इसे लगातार होम बलि का नाम दिया गया है। मसीह भी अपने समर्पण में हमारे लिए लगातार विनती करने के लिए सदा जीवित हैं। प्रिय मित्र, क्या आपके और आपके पापों के मध्य ख्रिस्त का बलिदान है? क्या उसका रक्त इसलिए बहा कि आप जीवित रहें? क्या आज तक आप उस पर भरोसा रखते थे? परमेश्वर आपके पापों के निमित्त केवल प्रभु यीशु पर देखते हैं और वही उन्हें संतुष्ट भी करता है। क्या कभी आपने उसको इस प्रकार से देखा है? परमेश्वर को वह पसंद नहीं होगा। वह तो केवल वही ग्रहण करता है जो ख्रिस्त ने आपके लिए किया और ख्रिस्त की धार्मिकता को ही आपकी धार्मिकता मानकर स्वीकार करता है। आज उस पर विश्वास करें और सर्वदा जीवित रहें। मित्रों, लय व्यवस्था की पुस्तक 6 अध्याय उसके 8-13 पद में विविध बलि के भिन्न भिन्न नियम को हम पाते हैं, जिसमें हम देखते हैं होम बलि व अग्नि बलि। निर्गमन की पुस्तक 6 अध्याय उसके 8-9 पद में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर यह कह कि होम बलि की व्यवस्था यह है, अर्थात होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे। मित्रों, वेदी पर अग्नि को लगातार उस समय तक जलाना था जब तक कि वे मिलाप वाले तंबू में हैं, परंतु निर्जन प्रदेश में यात्रा के समय यह संभव नहीं था। वेदी पर सारी रात अग्नि बलि रखी रहती थी और अग्नि भी प्रज्वलित रहती थी ताकि पशु बलि भस्म हो जाए। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा समर्पण की ओर संकेत है। यह केवल प्रभु यीशु ही कह सकता था कि मैं सदैव वही करता हूँ जिससे वह प्रसन्न है। यह प्रेम और आज्ञाकारिता को वह अपनी महायाजकीय प्रार्थना में प्रदर्शित करते हैं, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 19 पद में हम इसे पाते हैं, या उसको सुने यूहन्ना 4 उसके 31 पद में निम्न शब्दों को। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की कि हे रबी कुछ खा ले, परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। मित्रों, इससे यह तथ्य भी स्पष्ट होता है कि हमें स्वयं को जीवित बलिदान करके उसे अर्पित करना है, जिसे हम रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 1 पद में पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं घुटनों के बल वेदी पर पहुंचता और वहां आग धधकती तो मैं पीछे लौट पड़ता। मुझे आपके विषय में नहीं मालूम, पर अधिकतर लोग ऐसा ही करते। मेरी इच्छा है कि सदैव कहूं, मैं हमेशा उससे प्रसन्न करने की चेष्टा करता हूं। प्रभु यीशु ऐसा कह सके, पर मैं नहीं कह सकता। प्रत्येक विश्वासी के सामने आजकल एक बड़ी चुनौती है। परमेश्वर अपने बालकों से लगातार आज्ञा पालन पसंद करता है। इससे हमारे विचार को वास्तविक भोजन मिलना चाहिए। मित्रों, स्मरण रखें कि यही मुद्दा था जब शामुएल नबी ने राजा दाऊद को फटकारा। शामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, माना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। पहला शमूएल 15:22-23 पद में। आज मुझे और आपको अपना हृदय और अपने जीवन उसे समर्पित करना है। यदि आप उसके बन चुके हैं या हम बचे हुए हैं, तो ईश्वर न करे कि हम झूठे वायदे करें। तो क्या है जो ईश्वर मुझसे चाहता है? यह परमेश्वर का कार्य है कि आप उस पर विश्वास करें जिसे उसने भेजा है। हम यूहन्ना 6:29 पद में इसे पाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं लय व्यवस्था की पुस्तक 6:10-11 पद में लिखा हुआ है, और याजक अपने सनी के वस्त्र और अपने तन पर अपनी सनी की जंघिया पहनकर होम बलि की राख जो आग के भस्म करने से वेदी पर रह जाए उसे उठाकर वेदी के पास रखे। तब वह अपने ये वस्त्र उतारकर दूसरे वस्त्र पहनकर राख को छावनी से बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए। मित्रों, परमेश्वर ने विस्तार पूर्वक उन कपड़ों के बारे में निर्देश दिए जिन्हें पुरोहितों को पहनना था। उसे न केवल लंबा अंगरखा धारण करना था जैसा साधारण पुरोहित पहनते हैं, परंतु सूती जंघिया भी। ऐसा क्यों? शरीर को पूरी तरह ढकना चाहिए। परमेश्वर का कथन है कि वह शरीर के कामों को स्वीकृति नहीं दे सकता, क्योंकि शरीर के काम प्रकट है, अर्थात वे विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। गलतियों की पत्री 5:19-21 पद में मिलता है। ईश्वर शरीर के काम स्वीकार नहीं कर सकते, केवल आत्मा के फल उन्हें मंजूर है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। गलतियों के पत्र 5:22-23 पद। मित्रों, पुरोहित जब भस्म राख उठा ले तो अपने वस्त्र उतारे तथा नए पहरावे को धारण करे। यह हमें लगातार पाप से दूषित होने का स्मरण दिलाता है। वेदी की भस्म राख मौलिक रूप से पाप पर न्याय बताती है। फिर राख भी दूषित थी। इनको निकालकर स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए। यह पाप से अशुद्धता का कितना सुंदर चित्रण है। हम लय व्यवस्था की पुस्तक 6:12-13 पद को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, और वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए, और याजक भोर भोर उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे, और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए। वेदी पर लगातार अग्नि का प्रज्वलित होना हमें इस बात का स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर का अग्नि लगातार जल रही है। जो प्रभु यीशु का तिरस्कार करते हैं उनके लिए परमेश्वर का क्रोध आग के सदृश है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। यूहन्ना 6:36 पद। मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस अध्ययन के द्वारा अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किए हैं। आज आपके लिए मौका है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करें और अनंत जीवन को प्राप्त करें और क्रोध से बचें। प्रभु आप सबको अपनी आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।